ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री भांडेरवन धाम की, श्री वृंदावन धाम की। सब लोग जरा बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एवरीबॉडी कैन टेक ए सीट। तो इस भांडेरवन में कृष्ण भगवान के लीला के अंतर्गत बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। पहले तो उसका लिस्ट बताएंगे क्या क्या लीला हुई है। सबसे पहला तो राधा कृष्ण का यहाँ पर गुप्त विवाह हुआ है। उसके बाद में कृष्ण भगवान ने बत्सासुर के वध करने के बाद में यहाँ पर वेणुकूप का निर्माण किया है। फिर बलराम जी ने यहाँ पर प्रलम्बासुर का वध किया है। उसके बाद दावानल का पान कृष्ण भगवान ने किया है। और यहाँ पर कृष्ण भगवान और राधा रानी और गोपियों के साथ में मल्ल युद्ध हुआ करता था, मल्ल लीला कहते हैं उसको। फिर बंसीवट पे भगवान ने रास रचाया है और वहीं पर बंसीवट पे सुदामा जी ने कृष्ण भगवान का इंतजार किया है। ये कृष्ण भगवान की गौपाल गौचारण लीला का बहुत प्रमुख और प्रिय स्थान है। भगवान का सबसे बड़ा प्रिय स्थान जो है ग्वाल पोखरा गोवर्धन के पास में। दूसरा प्रिय स्थान है पावन सरोवर सख्य लीला का। और तीसरा प्रिय स्थान बहुत सारे हैं, उसमें से एक है भांडेरवन। यहाँ पर भगवान ने बड़े प्रेम से गौचारण लीला किया है। और एक लीला यहाँ पर होती है छाक लीला। छाक लीला का मतलब है कि जब भगवान गौचारण करते हैं तो वो दूर दूर जाते हैं। जब वत्सपाल लीला करते थे तो वह पास लीला करते थे, तो रोज दोपहर में घर जाकर भोजन किया करते। लेकिन जब दूर जाने लगे तभी हर रोज गोपियां उनको ढूंढते ढूंढते दोपहर का भोग लेके ढूंढती थी किस वन में गए हैं, और वहां पर जाकर उनको वो दोपहर का भोजन दिया करती थी, तो वहां पर वो भोजन किया करते थे। तो उनमें से ये उनका बहुत प्रिय स्थान है जहां पर वो दोपहर का भोजन जो आता था उसके उसको किया करते थे। उसको कहते हैं छाक लीला। तो संक्षेप में राधा कृष्ण का विवाह का प्रसंग ऐसा है जो गीत गोविंद में, गर्ग संहिता में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में उसका विस्तार में वर्णन दिया है। एक बार यहाँ पर नंद महाराज गोद में छोटे से बालक को लेकर घूम रहे थे। अचानक भगवान की इच्छा से यहाँ पर बादल छा गए, घनघोर हवा चलने लगी, घनघोर वर्षा भी होने लगी। तो नंद महाराज डर गए। तो उसमें से अचानक अंधेरे के वातावरण में एक दिव्य देवी प्रकट हुई, श्रीमती राधा रानी की। और राधा रानी को भगवान नंद महाराज ने कहा कि मैंने गर्ग मुनि से सुना था आपका महात्म्य, और आप ही इस बालक की भी रक्षा करो, मुझे डर लग रहा है बहुत। तो राधा रानी जो उस समय बड़े स्वरूप में थी, बाल स्वरूप में नहीं थी, उन्होंने कृष्ण भगवान को अपने गोद में लिया और वह बीच जंगल में चली गई। जैसे भी जंगल में जाती है तो कृष्ण भगवान भी 16 साल के आयु के हो जाते हैं उनके सामने, दोनों 16 साल की उम्र में हो जाते हैं। समय तो बिल्कुल बाल लीला का है, छोटे सी लीला का है, छोटे उम्र की। लेकिन उस समय जंगल के बीच में जाने के बाद गुप्त रूप में दोनों ही 16 साल के आयु के हो जाते हैं। वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी इसी जगह पर जहाँ पर आप बैठे हो, इस भांडेर वृक्ष के समक्ष यज्ञ कुंड का निर्माण करते हैं। और यज्ञ कुंड का निर्माण करके स्वयं पुरोहित बनते हैं और उनकी स्तुति भी करते हैं कि कैसे हर एक अवतार में अलग अलग रूप में यही देवी आपके साथ में हमेशा सेवा के लिए विराजमान रहते हैं। जैसे वैकुंठ में विष्णु के साथ में लक्ष्मी के रूप में, नरसिंह भगवान के साथ रमा देवी के रूप में, रामचंद्र के साथ सीता देवी के रूप में, ऐसे सबका नाम लेते हैं। और फिर लोक व्यवहार के लिए मैं यहाँ पर आपका विवाह करना चाहता हूँ, ऐसे इच्छा प्रकट करते हैं। फिर जैसे पिताजी कन्या का पाणी ग्रहण यानी कि कन्यादान करते हैं, वो पूरा यज्ञ का विधि करने के बाद में ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान को कन्यादान किया है। और फिर वो कहते हैं कि हमको दक्षिणा भी चाहिए। तो भगवान कहते हैं क्या चाहिए दक्षिणा में? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप दोनों के चरणों की चिरंतन भक्ति हमको मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा है तथास्तु। तो ब्रह्मा जी को यहाँ पर बहुत अनोखी अद्भुत दक्षिणा प्राप्त हुई है। फिर ब्रह्मा जी का जो कार्य समाप्त होता है, ब्रह्मा जी चले जाते हैं। उसके बाद में राधा रानी की इच्छा से यहाँ पर एक बहुत सुंदर भवन निर्माण होता है। उस भवन में राधा रानी स्वयं अपने हाथ से भगवान के लिए नवपरिणीत जो उनके पति हैं उनके लिए भोजन बनाती है और खुद के हाथ के उनको परोसती है। उसके बाद में वो इस जंगल में लुका छिपी खेलते हैं, निर्जन स्थल में अंदर प्रवेश करते हुए बाद में रासलीला करते हैं अकेले राधा रानी के साथ। उसके बाद में आप जानते हैं जमुना देवी यहाँ पर बहुत पास में बहती है, तो फिर जमुना जी में प्रवेश करते हैं, जमुना जी में स्नान करते हैं। उसके बाद जमुना जी में स्नान करने के बाद में नौका विहार करते हैं जमुना जी के जल में। उसके बाद में जमुना जी के अंदर बहुत सारे ऐसे कमल खिले हुए थे जो लक्ष्य दल के थे, 100,000 पंखुड़ियां हर एक कमल में थी। तो ऐसा एक पंकल कमल लक्ष्य दल का राधा रानी ले लेती हैं और चलने लगती हैं, तो भगवान उससे छीन लेते हैं उसको। तो राधा रानी कहते हैं हमारा कमल दल लौटा दो, कमल लौटा दो, तो नहीं देते हैं, भागते रहते हैं। फिर जंगल में जाकर छुपते, फिर वो मिलते हैं तो तुरंत भागते रहते हैं। तो राधा रानी बड़ी चतुरता से उनकी लकुटी और बंसी भी चुरा लेती है। फिर वो कहते हैं हमारी बंसी को लौटा दो, तो कहते हमारे कमल दल को लौटा दो। फिर वो मानकर कमल को लौटा देते हैं और भगवान की बंसी भी उनको वापस मिल जाती है। उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान राधा रानी का बहुत मनोहर प्रेम से श्रृंगार करते हैं। उसमें मुख पर पत्रावली की रचना करते हैं, पैरों में महावर यानी कि आल्टा लगाते हैं, नैनों में काजल की पतली रेख लगाते हैं, रत्नों और फूलों से उनका श्रृंगार करते हैं। जब राधा रानी का श्रृंगार पूरा होता है और कृष्ण भगवान राधा रानी का श्रृंगार कृष्ण भगवान पूरा करते हैं, तो राधा रानी भी अपने हाथ से कृष्ण का श्रृंगार करना चाहती हैं, लेकिन कृष्ण भगवान के तुरंत शिशु रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, जिस रूप में पहले उनको प्राप्त हुए थे इस लीला की शुरुआत में नंद महाराज के हाथ से, उसी रूप में वो रूपांतरित हो जाते हैं। तो राधा रानी कहती है हमारी आपकी योग माया हमारे पर क्यों फैलाते हो? तो राधा रानी कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये लीला आपकी इच्छा मनोवांछा जो है वो आगे भविष्य में पूरी की जाएगी, अभी आप मुझे मेरे पिता माता को सुपुर्द कर दो। तो सुसज्जित और श्रृंगार की हुई राधा रानी बालक कृष्ण को अपने गोद में लेते हुए नंद भवन पहुंचती हैं और यशोदा मैया को नंद बाबा को इस बालक को सुपुर्द करती हैं। यशोदा मैया बड़े ऋणी भाव से कृतज्ञ भाव से राधा रानी को कहती है कि आपने इतने संकट के समय मेरे बालक की रक्षा की, मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो राधा रानी भी बड़ी खुश हो जाती है उनकी कृपा प्राप्त करते हुए। ऐसे कहा गया है गर्ग संहिता में कि ये भगवान की लीला का जो श्रवण करते हैं उन्हें कभी भी पाप का स्पर्श नहीं हो सकता है, ऐसा वरदान नारद मुनि देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर भगवान जब बालक थे तो उनको बछड़ों का भार सौंप दिया गया गौचारण का, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया से खेल खेलते हुए कूदते हुए वो यहाँ पर गौचारण करते थे। तो ये जो वृक्ष आपके सामने है ये इतना विशाल था कि गोकुल तक और नंदगांव तक इसकी शाखाएं विस्तारित थी, और कई बार क्योंकि ये जमुना जी के इस तरफ है पूर्व दिशा में है, यहाँ पर 5 वन है, पश्चिम दिशा में 7 वन है, और नंदगांव से यहाँ पर जमुना जी को पार करने का समय जो था वो शाखाओं पर चढ़कर यहाँ पर आया करते थे। गोकुल नंदगांव का इतना बड़ा विस्तारित भांडी वृक्ष था, लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने उसको नष्ट कर दिया, फिर भी आज वो इतना विस्तार स्वरूप में आपके सामने उपलब्ध है, लेकिन इससे कई लक्ष गुना ये वृक्ष बड़ा था। तो ये भी इस यहाँ की लीला है कि ये भांडिर वृक्ष इतना फेमस था कि इस पर बैठकर ग्वाल बाल यात्रा किया करते थे, दे वाज़ टू ट्रैवल ओवर जमुना लाइक अ फ्लाई ओवर। फिर खेलते खेलते एक बार ऐसा वत्स इनके बछड़ों में घुस गया जिनका स्वरूप कुछ अद्भुत था। भगवान को याद था कि हमारे साथ में कौन से बछड़े चले हैं, तो बलराम जी को कहते हैं कि ये तो हमारे साथ में सुबह नहीं आया था, इसकी आंखें देखो लाल लाल कैसी कैसी, ऐसा घूर घूर के देख रहा है, इसे पूंछ उठा उठा के चल रहा है। तो उसको बाजू में लेने के लिए उसको कृष्ण बलराम घेर लेते हैं, उतने में वत्सासुर अपने पिछले दो पैरों से बहुत जोर से भगवान के कंधों पर लत्ता प्रहार करता है, फिर भगवान उसके दोनों पैर पकड़ के घुमा के उसको पटक देते हैं, फिर उठाते हैं और कपित्त के वृक्ष पर उसको मार देते हैं, तब उसकी मृत्यु हो जाती है और सारे कपित्त के वृक्ष जो है एक के बाद गिर जाते हैं। तो वत्सासुर के शरीर से जोत निकलती है और भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन हो जाती है। तो राजा बहुलाशो प्रश्न करते हैं कि ऐसे कैसे हुआ? राजा बहुलाश को बताते हैं कि मूर नाम के राक्षस का यह पुत्र है प्रमिलासुर, जिसने देवताओं पर विजय प्राप्त किया था। वो गर्व से एक बार वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आया और नंदिनी गाय को देखा तो ब्राह्मण का वेश बदल के नंदिनी गाय की भिक्षा मांगने लगा। वशिष्ठ मुनि त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे कि ये राक्षस है, लेकिन ब्राह्मण का वेश बदल कर यहाँ पर ढोंग करके भिक्षा मांग रहा है, तो वो कुछ नहीं बोलते, चले जाते। नंदिनी गाय खुद बोलती है कि तू तो राक्षस है, यहाँ छल कर रहा है, तू गाय का बछड़ा बन जाएगा। और तुरंत वो सुंदर और शक्तिशाली राक्षस, मतलब ब्राह्मण के स्वरूप में थे, वो बछड़ा बन जाते हैं। फिर गिड़गिड़ाते हैं, विनती करते हैं, तब जाके उनको उत्साह मिलता है कि जब कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में लीला करेंगे तो आप उनके बछड़ों में घुस जाएंगे और आपका कृष्ण भगवान उद्धार करेंगे। इसके वजह से उसके मृत्यु के बाद में ज्योति उनके शरीर में प्रवेश कर गई। उसके बाद वो वाल वालों को मिलने आए तो उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्हें कहा कि आपने महापातक किया है, आपने बछड़े को मारा है, मतलब राक्षस था, तो क्या हुआ, फिर भी वो बछड़ा था, तो आपको अभी सभी तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा, तब जाकर हम आपसे बोलेंगे और खेलेंगे। कृष्ण भगवान के लिए बहुत बड़ी धमकी है ये कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, तो कुछ भी करने को तैयार है। तो वो अपनी बंसी से यहाँ पर कुआं खोदते हैं जो आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है, वेणुकूप। और वेणुकूप में सारे तीर्थ आकर आश्रय ग्रहण करते हैं, सारी नदियां, कुंड, सरोवर, जितने जलाशय हैं, सब यहाँ पर आके विराजमान हो जाते हैं। फिर भगवान उसमें स्नान करते हैं और अपने सखाओं से मिलने आते हैं। यही वेणुकूप जो है, इसमें सत्य युग में राजा सत्यव्रत ने मत्स्य को कुछ समय के लिए रखा था, इसलिए उसको मत्स्यकूप कहते हैं सत्य युग में। त्रेता युग में उसको यक्षकूप कहते हैं, तो यक्षगण यहाँ पर निवास करते थे और भजन करके आनंद लिया करते थे। इस वेणुकूप का ऐसा महात्म्य है कि जो विवाहित स्त्रियां जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, वो अगर यहाँ पे व्रतस्थ होकर सोमवती अमावस्या के दिन आते हैं और स्नान करते हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हमारे लिए पुत्र की प्राप्ति का ज्यादा महत्व नहीं है, हमारे लिए महत्व ये है कि सभी तीर्थ विश्व के जितने भी हैं, सभी तीर्थ, केवल जल तीर्थ नहीं, पर्वत तीर्थ, कुंड तीर्थ, सागर तीर्थ, जितने भी तीर्थ प्रकार के तीर्थ हैं, वो सभी तीर्थों ने यहाँ पर वेणुकूप में आश्रय लिया है। इस तरह से ब्रज जो है सभी तीर्थों के अस्तित्व से और आश्रय से परिपूर्ण और संपूर्ण है। इस यहाँ पर आने के बाद में बाहर कहीं भी तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं होती है। फिर प्रलम्बासुर आया और प्रलम्बासुर आने के बाद में उसने ग्वाल बाल के रूप में रूपांतर करके घुस गए। वो तो लुका छुपी और एक प्रकार के खेल खेल रहे थे, दो ग्रुप बन गए, खेल खेला उन्होंने, और जो ग्रुप हारने वाला है उनको जीतने वालों को कंधे पर बिठाकर घुमाने का तय हुआ था। तो कृष्ण भगवान का ग्रुप जीत गया तो सुदामा ने उसको कंधे पर चढ़ा लिया, और बलराम जब जीत गए तो बलराम जी को कंधे पर चढ़ाने के लिए कोई ग्वाल बाल तैयार नहीं था। उतने में एक ग्वाल बाल प्रकट हो गया और बोला कि मैं चढ़ाऊंगा। सबको आश्चर्य हुआ कि नया ग्वाल बाल कहाँ से आया, लेकिन अगर बलराम जी को जीतने के बाद में उठाने को तैयार है तो कोई बात नहीं, चढ़ा दिया उनको कंधे पर। एक जगह तय थी, वहां से उनको वापस लौट के आना था घुमाने के बाद। सब लोग लौट के आए, कृष्ण भगवान को सुदामा लौट के लेकर आए, लेकिन ये जो है जो जगह तय थी उसके आगे ही मथुरा की ओर चल पड़ा, वापस ही नहीं आया। तो बलराम जी को आश्चर्य हुआ, अरे ये कौन सा बाल बाल है, कहाँ ले जा रहा है मुझे। तब ध्यान में आया कि राक्षस है, तो जैसे उनके ध्यान में आया तो वो राक्षस रूप में प्रकट हो गया। तो बलराम जी ने अपने दोनों हाथों से ऐसा मुष्टि प्रहार किया तो जैसे पर्वत शिखर वज्राघात से चूर चूर हो जाता है, वैसे उसका पहाड़ जैसा शरीर का जो शीश था वो चूर चूर हो गया और वहीं पर वो मृत हो गया। उस समय उसके शरीर में ज्योति निकली और बलराम जी के शरीर में चली गई। तो फिर बहुलाश ने प्रश्न किया, ऐसे कैसे हुआ? तो उसका उत्तर यह है कि यक्षराज कुबेर ने एक चित्ररथ नाम का अपना वन बना लिया था, उसमें सुंदर सुंदर सुगंधी फूल बनाए थे और रक्षा के लिए यक्षों को रखा था, लेकिन फिर भी लोग उसमें से फूल चोरी करते थे। तो उसने एक और एक सुरक्षा कवच लगा दिया, उसके ऊपर शाप दे दिया कि जो भी इस चित्ररथ वन से फूल तोड़ेगा वो असुर बन जाएगा। तो एक विजय नाम का यक्ष गंधर्व था, जो वो आता है ना गजेंद्र मोक्ष की कथा में, जो मुक्त हो जाती है तो वो एक गंधर्व बनता है, हु वो हु गंधर्व, वो जो मगरमच्छ था वो हु गंधर्व बनता है, उसका पुत्र था विजय गंधर्व, और रथ में बैठकर यहाँ घूमते घूमते आता है इस वन में और फूल से मोहित होकर फूल तोड़ लेता है, वो तुरंत असुर बन जाता है। उसको पता चलता नहीं कैसे कैसे हो गया। यक्ष उसको बताते हैं कि आपने इसका फूल तोड़ा है इसलिए आपको शाप की वजह से आप राक्षस बने हुए। तो फिर वो कुबेर के पास आके विनती करते हैं, मुझे पता नहीं था, माफ कर देना। उन्होंने कहा कि जब बलराम जी प्रवेश करेंगे दावानल सॉरी भांडिर वन में, तब आप उसमें से ग्वाल बाला में घुस जाकर फिर बलराम जी आपका उद्धार करेंगे। फिर बलराम जी ने प्रलंबासुर को मारकर उस यक्ष उस गंधर्व विजय का उद्धार किया। फिर ये दावानल ये जो प्रलंबासुर को मारने के बाद में सभी मुंज नाम के वन में प्रवेश करते हैं, सभी गाय यहाँ वहाँ हो जाती है, खेल खेल में मग्न हो जाते सब ग्वाल बाल। तो अचानक चारों ओर से आग लग जाती है दावानल, उस समय गाय और ग्वाल बाल पुकारते हैं कृष्ण कृष्ण बलराम हमें बचाओ। तो फिर बलराम जी वहां जाते हैं, कृष्ण जाते हैं वहां पर। उस समय वो कहते हैं कोई चिंता मत करना, सब आंखें बंद कर लेना। सब आंखें बंद कर लेते हैं और भगवान खड़े होकर सारी अग्नि को पी जाते हैं, क्योंकि पहले बार जब वृंदावन में कृष्ण कालिया को दमन करने के बाद में वन में आग लगी थी तो सबके आंखों के सामने उन्होंने अग्नि को प्राशन किया था और सब ग्वाल बाल ने जाकर बताया था घर पे कि इसने आज आग पी लिया। तो नंद बाबा और बड़े चिंतित हो गए थे, यशोदा माई अरे पहले मट्टी खाता है कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, अभी आग भी पीने लगा, बहुत चिंता हुई थी उनको। तो इस बार अगर वो दोबारा सबके आंखों के सामने अग्नि पीते तो गौचारण कैंसल होता था। मैया बोलती आज से गौचारण बंद, जब मुझसे आंखों से दूर चले जाते हो न जाने क्या क्या करते हो। तो ये गौचारण इतना उनको प्रिय था ग्वाल बालों का संग, इसलिए उन्होंने जानबूझ के उनको आंख बंद करके आंख का प्राशन किया और सबको दावानल के भय से मुक्त कर दिया। तो वो लीला भी यहां पर हुई है। और यहां पर राधा रानी और गोपियां कृष्ण के साथ में मल्ल युद्ध किया करते थे, कुश्ती खेलते थे और हर समय राधा रानी और गोपियां उनको कुश्ती में हराते थे। बाल बाल भी बोलते थे कि हमने उनको बहुत ट्रेनिंग दिया है कुश्ती खेलने का, फिर भी लगातार बेसुमार कंटिन्यूअसली और गोपियों से युद्ध में हारते थे बड़ी प्रेम के कारण। और यहाँ पर बंसीवट में भगवान ने बंसी बजाई है और रास रचाया है, तो भगवान की रास स्थली भी है, भगवान की बड़ी प्रिय गौचारण स्थली भी वो है। वहाँ पर भोजन करने का, वहाँ पर बैठकर भजन करने का बहुत ज़्यादा लाभ है और बंसीवट के शाखाओं को आप कान लगाएंगे तो बजबा से कहते हैं कि मृदंग की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आप लोग ट्राई कर लेना, लक होगा तो सुनाई पड़ेगा। कहते बंसी भी सुनाई पड़ती है और मृदंग भी सुनाई पड़ता है। तो इस तरह से हमने आपको संक्षेप में भांडेरवन का महात्म्य सुना दिया। वैसे तो सुबह उनका विवाह हो गया राधा कृष्ण का, पर आप लोग लेट आए तो विवाह का लंच जो है वो फोगला आश्रम में, सब लोग जाकर आज का प्रीति भोज फोगला आश्रम में कर लेना। और ऐसे कहते हैं कि जब शादी होती है ब्रज में तो सब लोग बड़े धूमधाम से नाचते हैं, यहाँ तो श्याम सुंदर जी और श्री जी का विवाह हुआ है तो आप लोग भी नाचना धूमधाम के, हम लोग नाच चुके हैं, अभी आपकी बारी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की ये जो मधुर मधुर लीलाएं हैं ये गौरव भाव से सुनना चाहिए, विथ फीलिंग्स ऑफ ऑय एंड रेवरेंस, नॉट द फीलिंग्स ऑफ वननेस एंड एंटरटेनमेंट। सब लोग इस स्थान को प्रार्थना करना, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने देवताओं के आनंद के लिए अकेले में गुप्त रूप से भगवान का विवाह किया था, तो एक तरह से प्रकट रूप से उनका विवाह हुआ भी है और प्रकट रूप से विवाह हुआ भी नहीं है, दोनों बातें सत्य हैं। दोनों बातें सत्य केवल कृष्ण भगवान की लीला में हो सकता है। हरे कृष्ण श्री कृष्ण भगवान की जय।